अध्ययन लेख 35। इस लेख का अध्ययन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, मंडली के हर भाई और बहन का आदर कीजिए। ये लेख पहला कुरिन्थियों 12 के 21 पर आधारित है, जहां लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, या सिर पैरों से नहीं कह सकता, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गीत 124, हमेशा वफादार। लेख की एक झलक। यहोवा के लोगों का परिवार कई तरह के लोगों से मिलकर बना है और सब मंडली में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि हमें हरेक भाई और बहन का आदर क्यों करना चाहिए। पैराग्राफ 1, सवाल, यहोवा अपने हर वफादार सेवक को किस नजर से देखता है? यहोवा अपने हर वफादार सेवक को मंडली में बहुत अहमियत देता है। हालांकि मंडली में हम सब अलग अलग काम करते हैं, मगर हम में से हर कोई अनमोल है और हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्रेषित पौलुस ने भी हमें यही बात समझाई। आइए देखें कि उसने क्या कहा। पैराग्राफ 2, सवाल, इफिसियों 4 के 16 के मुताबिक हमें क्यों एक दूसरे का आदर करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए? जैसे इस लेख की मुख्य आयत में बताया गया है, हम किसी भी भाई या बहन से नहीं कह सकते कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी यहोवा के सेवक हैं। पहला कुरिन्थियों 12 का 21। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी मंडली में शांति बनी रहेगी। इफिसियों 4 के 16 में लिखा है, मसीह से शरीर के सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं और जरूरी काम करने वाले हर जोड़ के जरिए एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जब शरीर का हर अंग सही तरीके से काम करता है तो इससे शरीर बढ़ता जाता है और प्यार में मजबूत होता जाता है। ऐसा करने से सबके बीच प्यार होगा और मंडली मजबूत रहेगी। पैराग्राफ 3, सवाल, इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? हम मंडली के सभी भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं? इस लेख में हम देखेंगे कि प्राचीन कैसे एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि हम कैसे अविवाहित भाई बहनों का आदर कर सकते हैं। आखिर में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम उन भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं जो हमारी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते। प्राचीनों, एक दूसरे का आदर कीजिए। पैराग्राफ 4, सवाल, रोमियो 12 के 10 में दी कौन सी सलाह प्राचीनों को माननी चाहिए? मंडली के सभी प्राचीनों को पवित्र शक्ति से नियुक्त किया गया है, लेकिन सबके पास अलग अलग काबिलियतें होती हैं। कुछ लोग अभी अभी प्राचीन बने हैं और उनके पास दूसरे प्राचीनों के मुकाबले कम तजुर्बा है। कुछ प्राचीन बीमारी या बुढ़ापे की वजह से मंडली में ज्यादा काम नहीं कर पाते। फिर भी एक प्राचीन को किसी भी प्राचीन के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि मंडली में उसकी कोई अहमियत नहीं है, मानो वो उससे कह रहा हो, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय हर प्राचीन को रोमियो 12 के 10 में दी सलाह माननी चाहिए। यहां लिखा है, एक दूसरे से भाइयों जैसा प्यार करो और गहरा लगाव रखो, खुद आगे बढ़कर दूसरों का आदर करो। पैराग्राफ 5, सवाल क, प्राचीन कैसे एक दूसरे का आदर कर सकते हैं? सवाल ख, ऐसा करना क्यों जरूरी है? प्राचीनों को कैसे एक दूसरे का आदर करना चाहिए? एक तरीका यह है कि उन्हें एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए, खासकर तब जब वो किसी गंभीर मामले पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिए कि 1 अक्टूबर 1988 के अंग्रेजी प्रहेदुर्ग में क्या कहा गया था। प्राचीनों को जब कोई जरूरी फैसला करना होता है या किसी मामले को निपटाना होता है तो वो एक बात याद रखते हैं। वो ये कि यीशु किसी भी प्राचीन के ध्यान में ला सकता है कि उन्हें बाइबल का कौन सा सिद्धांत लागू करना चाहिए। पवित्र शक्ति किसी एक प्राचीन पर नहीं बल्कि मंडली के सभी प्राचीनों पर काम करती है। पैराग्राफ 6, सवाल क, मंडली के प्राचीन कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? सवाल ख, इससे मंडली को क्या फायदा होता है? जो प्राचीन दूसरे प्राचीनों का आदर करता है, वो प्राचीनों की बैठक में दूसरों को बोलने का मौका देगा। हर बैठक में वही पहले बात नहीं करेगा। पूरी चर्चा के दौरान वो खुद ही नहीं बोलता जाएगा और ना ही ये सोचेगा कि उसकी राय ही हमेशा सही होती है। इसके बजाय वो अपनी मर्यादा में रहेगा और जब बोलना चाहिए तभी बोलेगा। वो बाकी प्राचीनों की बात ध्यान से सुनेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपनी राय बताने के बजाय बाइबल के सिद्धांतों पर चर्चा करेगा और विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास के निर्देशों को मानेगा। मत्ती 24 का 45 से 47। जब प्राचीन अपनी बैठक में एक दूसरे के साथ प्यार और आदर से बात करेंगे तो उन पर पवित्र शक्ति काम करेगी। तब वो सही फैसले कर पाएंगे और इससे मंडली मजबूत होगी। पैराग्राफ 5 और 6 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, प्राचीन एक दूसरे का आदर करते हैं इसलिए वो एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं। अविवाहित भाई बहनों का आदर कीजिए। पैराग्राफ 7, सवाल, यीशु ने अविवाहित लोगों को किस नजर से देखा? मंडली में शादीशुदा जोड़ों और परिवारों के अलावा कई अविवाहित भाई और बहन भी होते हैं। हमें अविवाहित भाई बहनों को किस नजर से देखना चाहिए? हमें उन्हें उसी नजर से देखना चाहिए जैसे यीशु देखता है। जब यीशु इस धरती पर आया तो उसने शादी नहीं की, बल्कि अपना पूरा समय और ध्यान यहोवा की सेवा करने में लगाया। लेकिन उसने कभी यह नहीं सिखाया कि एक मसीह के लिए शादी करना जरूरी है। उसने ये भी नहीं कहा कि एक मसीह को अविवाहित रहना है, मगर उसने ये जरूर कहा कि कुछ मसीह अविवाहित रहने का फैसला करेंगे। यीशु अविवाहित लोगों का आदर करता था। उसने उन्हें कभी नीचा नहीं समझा, ना ही उसने ऐसा सोचा कि शादी के बिना जिंदगी अधूरी होती है। पैराग्राफ 8, सवाल, पहला कुरिन्थियों 7 के 7 से 9 के मुताबिक पौलुस ने मसीहों को क्या सलाह दी? यीशु की तरह प्रेषित पौलुस ने भी अविवाहित रहकर परमेश्वर की सेवा की, मगर उसने भी ये नहीं सिखाया कि शादी करना गलत है। वो जानता था कि एक व्यक्ति शादी करेगा या नहीं ये उसकी मर्जी है। फिर भी पौलुस ने मसीहों को यह सलाह दी कि अगर वो अविवाहित रहकर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला कुरिन्थियों 7 के 7 से 9 में लिखा है, मैं तो यही चाहता हूं कि सब लोग ऐसे होते जैसा मैं हूं, मगर हर किसी को परमेश्वर से अपना तोहफा मिला है, किसी को इस तरह का तो किसी को दूसरी तरह का। अब मैं अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूं कि उनके लिए अच्छा है कि वो ऐसे ही रहे जैसा मैं हूं, लेकिन अगर उनमें संयम नहीं तो वे शादी कर ले, क्योंकि वासनाओं की आग में जलने से तो अच्छा है कि वो शादी कर ले। इससे पता चलता है कि पौलुस ने कभी भी अविवाहित भाई बहनों को नीचा नहीं समझा। उसने तो तिमुथियुस को, जो एक अविवाहित भाई था, भारी जिम्मेदारियां सौंपी थी। फुटनोट, तिमुथियुस सारी जिंदगी कुंवारा रहा या नहीं ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। फुटनोट समाप्त। इसलिए ऐसा सोचना गलत होगा कि अगर एक भाई शादीशुदा नहीं है तो वो मंडली की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं है। पैराग्राफ 9, सवाल, शादी करने या ना करने के बारे में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए? यीशु और पौलुस ने यह नहीं सिखाया कि मसीहों के लिए शादी करना जरूरी है, ना ही उन्होंने ये सिखाया कि उन्हें अविवाहित रहना चाहिए। तो फिर शादी करने या न करने के बारे में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए? इसका जवाब 1 अक्टूबर 2012 की अंग्रेजी प्रहेतुर्ग में दिया गया है। वहां लिखा है, शादी करना और अविवाहित रहना दोनों ही परमेश्वर की तरफ से आशीष हैं। यहोवा ऐसा नहीं मानता कि अविवाहित रहना दुख की बात है या शर्म की बात है। हमें भी यहोवा की तरह अविवाहित भाई बहनों का आदर करना चाहिए। पैराग्राफ 10, सवाल, हम अविवाहित भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं? हमें अविवाहित भाई बहनों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि वो अलग अलग कारणों से अविवाहित हैं। कुछ भाई बहनों ने तो शादी ना करने का फैसला किया है, वहीं कुछ मसीही शादी तो करना चाहते हैं पर उन्हें सही साथी नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के जीवन साथी की मौत हो गई है, चाहे एक मसीही किसी भी कारण से अविवाहित हो। हमें उससे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा, ना ही उससे ये कहना चाहिए कि हम उसे साथी ढूंढ कर देंगे। ये बात अलग है कि कुछ मसीही दूसरों से साथी ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन जिन अविवाहित भाई बहनों ने हमसे मदद नहीं मांगी है, उनसे अगर हम कहें कि हम आपके लिए साथी ढूंढेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? जानने के लिए आइए देखें कि कुछ अविवाहित भाई बहन क्या कहते हैं। पैराग्राफ 10 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। अगर हम अविवाहित भाई बहनों का आदर करते हैं तो हम क्या नहीं करेंगे? पैराग्राफ 11 और 12। सवाल, हमारी वजह से अविवाहित भाई बहन कैसे निराश हो सकते हैं? सबसे पहले आइए एक सर्किट निगरान की बात करें जो अविवाहित है और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाता है। वो बताता है कि अविवाहित रहने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ भाई बहन उससे पूछते रहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। हालांकि ये भाई बहन उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो ऐसा पूछते हैं तो वो निराश हो जाता है। बेथल में सेवा करने वाला एक अविवाहित भाई कहता है, मंडली के कुछ लोग अविवाहित भाई बहनों पर तरस खाते हैं। वो हमें ये महसूस कराते हैं कि अविवाहित रहना एक बोझ है, ना कि आशीष। बेथल में सेवा करने वाली एक अविवाहित बहन कहती है, कुछ भाई बहन सोचते हैं कि सभी अविवाहित लोग साथी ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब भी एक अविवाहित व्यक्ति दो चार लोगों के बीच होता है तो वो साथी तलाश रहा है। एक बार मुझे बेथल के काम के लिए दूसरे देश भेजा गया था। मैं जिस दिन वहां पहुंची उस दिन मंडली की सभा थी। मैं जिस बहन के यहां रुकी उसने मुझे बताया कि उसकी मंडली में दो अविवाहित भाई हैं जो मेरी उम्र के हैं। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे लिए जोड़ी बिठाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही हम राजघर पहुंचे वो मुझे उन दो भाइयों के पास ले गई। मैं और वो दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हो गए। पैराग्राफ 13। सवाल, किन लोगों ने एक अविवाहित बहन के लिए अच्छी मिसाल रखी है? बेथल में काम करने वाली एक और अविवाहित बहन कहती है, मैं कुछ पायनियरों को जानती हूं जो कई सालों से अविवाहित हैं। वो सच्चाई में बहुत मजबूत हैं और बहुत त्याग करते हैं। वो अपनी सेवा से बहुत खुश हैं और मंडली की बहुत मदद करते हैं। अविवाहित होने की वजह से वो खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते, ना ही ये सोचकर नीचा महसूस करते हैं कि उनका ना कोई साथी है ना ही बच्चे हैं। जब मंडली में सब एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे को अनमोल समझते हैं तो सब खुश रहते हैं। ना कोई किसी को बेचारा समझता है, ना ही किसी से जलता है। कोई किसी को अनदेखा नहीं करता, ना ही किसी को सिर आंखों पर बिठाता है। हर कोई हर किसी से प्यार करता है। पैराग्राफ 14। सवाल, हम अविवाहित भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं? अगर हम अविवाहित भाई बहनों को उनके अच्छे गुणों की वजह से अनमोल समझें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हमें उन्हें बेचारे नहीं समझना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वो यहोवा के कितने वफादार हैं। तब हमारे अविवाहित भाई बहनों को यह नहीं लगेगा कि हम उनसे कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पहला कुरिन्थियों 12:21। उन्हें खुशी होगी कि हम उनका आदर करते हैं और मंडली में उन्हें अनमोल समझते हैं। उनका आदर कीजिए जो आपकी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते। पैराग्राफ 15। सवाल, ज्यादा प्रचार करने के लिए कुछ भाई बहनों ने कौन से त्याग किए हैं? बीते कुछ सालों से कुछ प्रचारक नई भाषा सीख रहे हैं ताकि वो ज्यादा सेवा कर सकें। इसके लिए उन्होंने कई त्याग किए हैं। पहले वो ऐसी मंडली में होते थे जहां उनकी मातृभाषा बोली जाती थी, मगर अब वो ऐसी मंडली में चले गए हैं जहां दूसरी भाषा बोली जाती है और जहां प्रचारकों की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है क्योंकि वो यहोवा की ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। ये सच है कि नई भाषा सीखने में उन्हें सालों लगेंगे, फिर भी वो अपनी नई मंडली की बहुत मदद करते हैं। उनके अच्छे गुणों और अनुभव की वजह से मंडली मजबूत होती है। हम इन भाई बहनों का बहुत आदर करते हैं जिन्होंने ये त्याग किए हैं। पैराग्राफ 16। सवाल, किसी भाई की सिफारिश करने के लिए प्राचीन किस बात पर ध्यान देंगे? भले ही एक भाई नई मंडली की भाषा अच्छी तरह ना बोल पाता हो, फिर भी अगर वो प्राचीन या सहायक सेवक बनने के काबिल है तो प्राचीनों का निकाय उसकी सिफारिश करेगा। वो ये देखेंगे कि प्राचीनों या सहायक सेवकों के लिए बाइबल में बताई योग्यताएं उसमें हैं या नहीं, ना कि ये कि वो मंडली की भाषा अच्छी तरह बोलता है या नहीं। पैराग्राफ 17। सवाल, दूसरे देश में बसने वालों को क्या फैसला करना होता है? कुछ मसीही परिवार अपने देश के बुरे हालात से बचने के लिए या नौकरी पाने के लिए दूसरे देश में जा बसे हैं। वहां उनके बच्चों की पढ़ाई उस देश की मुख्य भाषा में होती है। माता पिताओं को भी नौकरी पाने के लिए उस देश की भाषा सीखनी पड़ती है। अगर नए देश में उनकी भाषा की मंडली या समूह है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें किस मंडली में जाना चाहिए? उस देश की मुख्य भाषा की मंडली में या अपनी भाषा की मंडली में? पैराग्राफ 18। सवाल, गलातियों 6:5 के मुताबिक हमें दूसरों के फैसलों की नुक्ताचीनी क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसे में परिवार के मुखिया को फैसला करना चाहिए कि उसका परिवार किस भाषा की मंडली में जाएगा। उसे देखना होगा कि उसके परिवार के लिए क्या ठीक रहेगा। गलातियों 6:5 में लिखा है, इसलिए कि हर कोई अपना बोझ खुद उठाएगा। यह एक परिवार का निजी मामला है, इसलिए परिवार का मुखिया जो भी फैसला करता है हमें उसकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। जब ऐसे परिवार हमारी मंडली में आते हैं तो हमें प्यार से उनका स्वागत करना चाहिए। पैराग्राफ 19। सवाल, परिवार के मुखियाओं को कौन सा फैसला सोच समझकर करना चाहिए? कुछ परिवार ऐसी मंडलियों में सेवा करते हैं जहां उनकी भाषा में सभाएं होती हैं, लेकिन उनके बच्चे अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं बोल पाते। ऐसे में बच्चे सभाओं से कुछ सीख नहीं पाते और सच्चाई में तरक्की नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस देश की भाषा में होती है, न कि उनकी मातृभाषा में। इन हालात में परिवार के मुखियाओं को क्या करना चाहिए? उन्हें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए और सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उन्हें देखना होगा कि क्या करना सही रहेगा ताकि उनके बच्चे यहोवा के साथ एक रिश्ता कायम कर सकें और भाई बहनों से दोस्ती कर सकें। परिवार के मुखिया या तो अपने बच्चों को मातृभाषा अच्छे से सिखा सकते हैं, या वो अपने परिवार को उस मंडी में ले जा सकते हैं जहां बच्चों को समझ आने वाली भाषा में सभाएं होती हैं। परिवार के मुखिया जो भी फैसला करें यह उनका निजी मामला है। जब ऐसे परिवार हमारी मंडली में आते हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए और उन्हें अनमोल समझना चाहिए। पैराग्राफ 20। सवाल, हम उन भाई बहनों का कैसे आदर कर सकते हैं जो एक नई भाषा सीख रहे हैं? जैसे हमने देखा, कई मंडलियों में ऐसे भाई बहन हैं जो एक नई भाषा सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नई भाषा ठीक से नहीं आती, लेकिन वो यहोवा से बहुत प्यार करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर हम उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दें तो हम दिल से उनका आदर करेंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस इसलिए कि वो हमारी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते। पैराग्राफ 20 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, नई भाषा सीखने वाले भाई बहनों का हम कैसे आदर कर सकते हैं? यहोवा हम सबको अनमोल समझता है। पैराग्राफ 21 और 22। सवाल, हम किस बात के लिए शुक्रगुजार हैं? हम यहोवा के कितने शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी मंडली में हम में से हर एक को अनमोल समझता है। चाहे हम पुरुष हों या स्त्री, शादीशुदा हों या नहीं, उम्र में छोटे हों या बड़े, एक भाषा अच्छी तरह बोलते हों या नहीं, हम सब यहोवा की नजर में अनमोल हैं और एक दूसरे के लिए भी अनमोल हैं। पौलुस ने शरीर की जो मिसाल दी उससे हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं। आइए हम उन बातों को लागू करते रहें, तब हम इस बात को समझेंगे कि यहोवा की मंडली में हमारी बहुत अहमियत है और हम दूसरे भाई बहनों का भी आदर करेंगे। आपका जवाब क्या होगा? प्राचीन कैसे दूसरे प्राचीनों का आदर कर सकते हैं? हम अविवाहित भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं? हम उन भाई बहनों का आदर कैसे कर सकते हैं जो हमारी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते। गीत 90, एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं। लेख समाप्त।